योएल की पुस्तक और लाउदी की आई सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च संख्या दो नंबर दो।
मैं आकुल लालसा के साथ उस समय की प्रतीक्षा करता हूँ जब पेंटिकोस के दिन की घटनाएं उस अवसर से भी कहीं अधिक सामर्थ्य के साथ फिर दोहराई जाएंगी। यूहन्ना कहता है, मैंने एक और स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके पास महान सामर्थ्य था और पृथ्वी उसकी महिमा से प्रकाशित हो गई। तब पेंटिकोस के समय की ही तरह लोग अपनी अपनी भाषा में उन्हें सुनाया गया सत्य सुनेंगे, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही भाषा में। परमेश्वर हर उस आत्मा में नया जीवन फूंक सकते हैं जो सच्चे मन से उनकी सेवा करना चाहती है, और वे वेदी पर से एक दहकता अंगारा लेकर उनके होंठों को छू सकते हैं और उनकी वाणी को अपनी स्तुति में वाक्पटु बना सकते हैं। परमेश्वर के वचन के अद्भुत सत्यों को प्रकट करने की सामर्थ्य से हजारों आवाजें ओतप्रोत कर दी जाएंगी, हकलाती जीभ खुल जाएगी और संकोची सत्य की साहसपूर्ण गवाही देने के लिए दृढ़ किए जाएंगे। प्रभु अपने लोगों की सहायता करें कि वे आत्मा के मंदिर को हर प्रकार की अशुद्धि से शुद्ध करें और उनसे ऐसा निकट संबंध बनाए रखें कि जब अंतिम वर्षा उंडेली जाएगी तो वे उसके सहभागी बने। रिव्यू एंड हेरल्ड 20 जुलाई 1886।
जब पेंटेकोस्ट को प्रभु के पर्व के रूप में माना जाता है तो उसे फसह, खमीर रहित रोटियों के पर्व, पहली उपज की भेंट और सप्ताहों के पर्व से अलग नहीं किया जा सकता। पेंटेकोस्ट एक अवधि है, हालांकि वो समय का एक बिंदु भी है। इसी कारण इसे पेंटेकोस्ट का काल कहा जाता है। ये काल मसीह की मृत्यु, दफना और पुनरुत्थान से आरंभ हुआ। अपने स्वर्गारोहण के बाद मसीह ने 40 दिनों की व्यक्तिगत शिक्षा प्रारंभ की, जिसके बाद ऊपरी कोठरी में 10 दिन हुए जहां एकता स्थापित हुई। अगस्त 11 ने एक ऐसे काल का आरंभ किया जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के कानून पर समाप्त होता है। उस रविवार के कानून को समय के एक बिंदु के रूप में पेंटिकॉस्ट के दिन से दर्शाया गया है। ऐसा समय बिंदु जिसके पहले अगस्त 11 से शुरू हुई एक अवधि रही है। अगस्त 11 से लेकर रविवार के कानून तक पेंटिकॉस्ट का काल दो हराया जाता है। पत्रस ने यह स्पष्ट किया, क्योंकि संदेश के विरुद्ध विवाद उठाया गया था, कि अग्नि की जिह्वाओं की वो चमत्कारी घटना नशे की मूर्खता नहीं बल्कि योएल की पुस्तक की पूर्ति थी। जिह्वाएं किसी संदेश के प्रस्तुतिकरण का प्रतिनिधित्व करती हैं और आग पवित्र आत्मा का प्रतीक है। पेंतेकुस्त का संदेश दिव्यता, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है और जिह्वा की मानवता का सम्मिलन प्रस्तुत करता है। जैसे पत्रस अंतिम वर्षा के समय 144,000 का प्रतिनिधित्व करता है, वैसे ही वितंडा करने वाले यहूदी पूर्व वाचा के उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें ठीक उसी समय जब अंतिम वर्षा बरस रही होती है छोड़ दिया जा रहा है।
और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और जैसा आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वैसे ही वे अन्य भाषाओं में बोलने लगे, और यरूशलम में आकाश के नीचे हर एक राष्ट्र से आए सुख भक्त यहूदियों पुरुष रहते थे। जब ये समाचार फैल गया तो भीड़ इकट्ठी हो गई और चकित हुई, क्योंकि हर एक व्यक्ति उन्हें अपनी ही भाषा में बोलते हुए सुन रहा था। और वे सब अचंभित हुए और आश्चर्य करके आपस में कहने लगे, देखो जो बोल रहे हैं, क्या वे सब गलीली नहीं हैं? फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा उन्हें कैसे सुन रहा है? पार्थी, मादी, एलामी और मेसोपोटामिया के रहने वाले, और यहूदिया और काप्पदोकिया, पोंटुस और आसिया, फ्रिगिया और पंफिलिया, मिस्र तथा किरेने के आसपास की लीबिया के भागों के रहने वाले, और रोम से आए परदेशी, यहूदी और धर्मांतरित, क्रीती और अरब, हम उन्हें अपनी अपनी भाषाओं में परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का वर्णन करते हुए सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और संशय में पड़कर आपस में कहने लगे, ये क्या अर्थ है? औरों ने ठट्ठा करके कहा, ये लोग नई दाख मदिरा से भरे हुए हैं। परंतु पतरस 11 के साथ खड़ा होकर अपनी आवाज उठाकर उनसे कहा, हे यहूदिया के पुरुषों और यरूशलम में रहने वाले सब लोगों, ये तुम्हें मालूम हो और मेरी बातें ध्यान से सुनो, क्योंकि ये लोग नशे में नहीं हैं जैसा तुम समझते हो, क्योंकि अभी तो दिन का तीसरा घंटा है। प्रेरितों के काम 2:4-15।
पतरस पिंतेकुस्त को यूएल की पुस्तक की पूर्ति के रूप में समझा रहा है। वो ऐसा भविष्यवाणी के रूप में कर रहा है जबकि वहां संपूर्ण संसार का प्रतिनिधित्व है, क्योंकि उस अंश में लिखा है कि श्रोता आकाश के नीचे की हर जाति में से आए थे। नौ गरेवर पर पृथ्वी मसीह की महिमा से आलोकित हुई और फिर रविवार के कानून पर 144,000 पूर्णतः मसीह की महिमा को प्रतिबिंबित करेंगे जब वे संपूर्ण संसार के सामने एक पताका पैलाव का ऊंचा उठाए जाएंगे। पिंतेकुस्त का काल नौ गरेवर पर आरंभ हुआ और ये रविवार के कानून पर समाप्त होता है।
जब तक हमारे चरित्र पर एक भी धब्बा या दाग है, तब तक हम में से कोई भी परमेश्वर की मुहर कभी नहीं पाएगा। हमारे चरित्र की खामियों को दूर करना, आत्मा के मंदिर को हर अशुद्धि से शुद्ध करना, ये कार्य हमारे ही ऊपर छोड़ा गया है। तब अंतिम वर्षा हम पर वैसी ही बरसेगी जैसे पिंतेकुस्त के दिन शिष्यों पर प्रारंभिक वर्षा बरसी थी। हम अपनी उपलब्धियों से बहुत आसानी से संतुष्ट हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम धनी हैं और धन संपत्ति में बढ़ गए हैं, और हमें ये नहीं पता कि हम दुर्दशाग्रस्त, दयनीय, निर्धन, अंधे और नंगे हैं। अब सच्चे साक्षी की चेतावनी पर ध्यान देने का समय है। मैं तुझे सलाह देता हूँ कि तू मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ताकि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ताकि तू उन्हें परिधान कर सके और तेरी नग्नता की लज्जा प्रकट न हो, और अपनी आंखों में नेत्र लेप लगा ताकि तू देख सके।
अभी हमें अपने आप को और अपने बच्चों को संसार की कलुषता से निष्कलंक बनाए रखना है। अभी हमें अपने चरित्र के वस्त्र धोकर उन्हें मेमने के लहू में श्वेत करना है। अभी हमें अहंकार, वासना और आत्मिक आलस्य पर विजय पानी है। अभी हमें जाग उठना है और चरित्र की समरसता के लिए संकल्पित प्रयास करना है। आज यदि तुम उसकी वाणी सुनो तो अपने हृदयों को कठोर न करो। हम अत्यंत परीक्षात्मक स्थिति में हैं, अपने प्रभु के प्रकटन की प्रतीक्षा में जागते और देखते हुए। संसार अंधकार में है, परंतु हे भाइयों, पौलुस कहता है, तुम अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। प्रतीक्षा करती लालायित आत्मा के लिए अंधकार से प्रकाश, शोक से आनंद और क्लांति से विश्राम निकालना सदा से परमेश्वर का उद्देश्य रहा है। तैयारी के महान कार्य में बंधुओं, आप क्या कर रहे हैं? जो लोग संसार के साथ एक हो रहे हैं वे सांसारिक छाप ग्रहण कर रहे हैं और पशु की चिन्ह के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो अपने आप पर भरोसा नहीं करते, जो परमेश्वर के सामने स्वयं को दीन बनाते हैं और सत्य का पालन करके अपनी आत्माओं को शुद्ध करते हैं, ऐसे लोग स्वर्गीय छाप ग्रहण कर रहे हैं और अपने माथे पर परमेश्वर की मुहर के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब आदेश जारी होगा और छाप अंकित की जाएगी, तब उनका चरित्र अनंत काल तक पवित्र और निष्कलंक बना रहेगा।
अब तैयारी का समय है। परमेश्वर की मोहर कभी भी किसी अशुद्ध पुरुष या स्त्री के ललाट पर नहीं लगाई जाएगी। ये महत्वाकांक्षी संसार प्रेमी पुरुष या स्त्री के ललाट पर कभी नहीं लगाई जाएगी। ये झूठी जिह्वा या कपटी हृदय वाले पुरुषों या स्त्रियों के ललाट पर कभी नहीं लगाई जाएगी। जो सभी ये मोहर प्राप्त करें उन्हें परमेश्वर के सामने निष्कलंक होना चाहिए। स्वर्ग के अभ्यर्थी, आगे बढ़ो मेरे भाइयों और बहनों। इस समय इन बिंदुओं पर केवल संक्षेप में ही लिखा जा रहा है, केवल आपका ध्यान तैयारी की आवश्यकता की ओर आकर्षित करने के लिए। आप स्वयं शास्त्रों की खोज करें ताकि आप वर्तमान समय की भयावह गंभीरता को समझ सकें। टेस्टिमोनीज खंड 5 212-213।
यह बहन व्हाइट पेंटेकोस्ट को एक समय बिंदु के रूप में पहचानती है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के कानून, जब आदेश जारी होता है, के साथ मेल खाता है। फिर भी यद्यपि वो रविवार के कानून और पेंटेकोस्ट को एक समय बिंदु के रूप में चिन्हित करती है, तैयारी के लिए बुलाने वाला उनका संदेश रविवार के कानून से पहले की उस अवधि की पहचान करता है जिसका प्रतिरूप पेंटेकोस्ट का मौसम है। रविवार का कानून सातवें दिन के सप्त की परीक्षा है और 9:11 से लेकर रविवार के कानून तक की अवधि को प्रतीकात्मक प्रभु की तैयारी का दिन कहा जा सकता है। तैयारी परीक्षा से पहले होती है। अंतिम वर्षा बरसेगी 144,000 पर, ठीक जैसे पेंटेकोस्ट के दिन प्रारंभिक वर्षा बर शिष्यों पर बरसी। जिस काल को पेंटेकोस्तीय ऋतु के रूप में दर्शाया गया है वो तब एक छिड़काव से आरंभ हुआ जब मसीह अपने स्वर्गारोहण से लौटे।
ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। यूहन्ना 20:22।
उनकी श्वास पवित्र आत्मा का संचार करती है और शब्दों की ध्वनि उत्पन्न करने वाली भी श्वास ही है। यीशु ही वचन है और अपने वचन के संप्रेषण के माध्यम से उनकी श्वास पवित्र आत्मा का संचार करती है। श्वास ही वो है जिसने आदम के शरीर में प्राण फूंके और श्वास ही वो है जो यहेजकेल की मृत सूखी हड्डियों से बनी पुनर्जीवित सेना को जीवन देती है।
अपने चेलों पर पवित्र आत्मा फूंकने और उन्हें अपनी शांति प्रदान करने का मसीहा कार्य पिंतेकुस्त के दिन बरसाई जाने वाली प्रचुर वर्षा से पहले कुछ बूंदों के समान था। भविष्यवाणी की आत्मा खंड 3:350 है।
पिंतेकुस्त काल के आरंभ में मसीह की श्वास ने शिष्यों को पवित्र आत्मा प्रदान की, परंतु कुछ ने संदेह किया।
परंतु 12 में से एक तोमा, जिसे दिदुमुस कहा जाता था, जब यीशु आया तब वो उनके साथ नहीं था। इसलिए दूसरे चेलों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। परंतु उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान ना देख लूं और कीलों के निशानों में अपनी उंगली ना डाल दूं और अपना हाथ उसकी बगल में ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यूहन्ना 5:24-25।
पेंटिकोस्ट का काल एक परीक्षण के दौर से आरंभ हुआ, जो मसीह के श्वास फूंकने और थोमा के संदेह के विवाद से शुरू हुआ। आरंभ में थोमा का यह विवाद पेंटिकोस्ट काल के अंत में यहूदियों के विवाद का प्रतिरूप है। आरंभ में मसीह ने अपना वचन और फिर तब पवित्र आत्मा चेलों को प्रदान किया और पेंटिकोस्ट काल के अंत में चेलों ने वही वचन और पवित्र आत्मा संसार को प्रदान किया। जब मसीह ने शिष्यों पर सांस फूंकी, तब उन्होंने जो कार्य किया वो इम्माउस के मार्ग पर शिष्यों के साथ उन्होंने अभी अभी जो कार्य पूरा किया था उसी का दूसरा साक्ष्य था।
और ऐसा हुआ कि जब वे आपस में बातें कर रहे थे और विचार विमर्श कर रहे थे, तो यीशु स्वयं उनके पास आ गए और उनके साथ चलने लगे, परंतु उनकी आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ा था कि वे उसे पहचान न सके। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और विश्वास करने में धीमे हृदय वालों, भविष्यद्वक्ताओं ने जो कुछ कहा है उस सब पर विश्वास करने में तुम्हारा मन क्यों धीमा है? क्या मसीह को ये बातें सहकर अपनी महिमा में प्रवेश करना ना था? और मूसा से आरंभ करके और सब भविष्यद्वक्ताओं से उसने सारे शास्त्रों में अपने विषय की बातें उन्हें समझाईं। और वे उस गांव के निकट पहुंचे जहां वे जा रहे थे और उसने ऐसा दिखाया मानो वह आगे जाने वाला है। परंतु उन्होंने उसे आग्रह करके कहा, हमारे साथ ठहरिए, क्योंकि सांझ निकट है और दिन बहुत ढल चुका है। तब वह उनके साथ ठहरने के लिए भीतर गया। और ऐसा हुआ कि जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी ली, धन्यवाद करके उसे तोड़ा और उन्हें दी। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी दृष्टि से ओझल हो गया। और वे आपस में कहने लगे, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और हमें शास्त्रों का अर्थ खोलता था, तो क्या हमारा हृदय हमारे भीतर जलता न था? लूका 24:15-16-25-32।
जैसे यीशु इम्माउस में भोजन करने बैठा, वैसे ही बाद में उसने चेलों के साथ भोजन किया। दोनों ही प्रसंगों में भोजन का वर्णन है। ये मिलकर ये संकेत करते हैं कि पिंतेकुस्त काल का आरंभ पवित्र आत्मा की श्वास और भोजन से चिन्हित है। आरंभिक घटनाएं विश्वास करने वालों और संदेह करने वालों दो वर्गों के बीच विवाद उत्पन्न करती हैं। भोजन पवित्र आत्मा का प्रदान और शास्त्रों को खोलना, इन सब में ये भी सम्मिलित है कि मसीह ने अपनी शिक्षा मूसा और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ की। मसीह की शिक्षा इस प्रकार दी गई कि मूसा की भविष्यवाणी की रेखा को लेकर उसे सब भविष्यद्वक्ताओं की रेखाओं के साथ मिलाया गया, इधर थोड़ा उधर थोड़ा। 9:11 को यहेजकेल के चार पवनों की श्वास अध्याय 37 में वर्णित मृत सूखी हड्डियों पर बह चली। उस समय जैसा कि 11 अगस्त 1840 को उतरकर प्रथम स्वर्गदूत के संदेश को सशक्त करने वाले स्वर्गदूत के प्रतिरूप में दर्शाया गया, प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 का स्वर्गदूत एक ऐसा संदेश लेकर उतरा जिसे खाया जाना चाहिए, जैसा कि पेंटेकोस्ट काल के आरंभ में शिष्यों ने खाया था। थोमा की विश्वास करने की अनिच्छा ये दर्शाती है कि जब संदेश प्रस्तुत किया जाता है तब एक हिलाहट चिन्हित होती है। नोवंबर को ट्विन टावर्स के गिरने की बात करते हुए हमें बताया जाता है कि प्रभु राष्ट्रों को भयंकर रूप से झकझोरने के लिए उठ खड़े हुए। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर की प्रजा के बीच होने वाली उथल पुथल उन लोगों द्वारा उत्पन्न होती है जो सत्य के संदेश के विरुद्ध लड़ रहे हैं। कुछ उथल पुथलें बाहरी होती हैं, लेकिन कलीसिया के भीतर होने वाली आंतरिक उथल पुथलें उस वातावरण में घटित होती हैं जहां कोई संदेश प्रस्तुत किया जा रहा होता है।
मैंने उस हिलाहट का अर्थ पूछा जो मैंने देखी थी, और मुझे दिखाया गया कि वो लाओदीकियों के लिए सच्चे साक्षी के परामर्श से प्रेरित सीधी गवाही के कारण होगी। इसका प्रभाव इसे ग्रहण करने वाले के हृदय पर पड़ेगा और उसे आदर्श को ऊंचा उठाने तथा सीधी सच्चाई की खुलकर घोषणा करने के लिए प्रेरित करेगा। कुछ लोग इस सीधी गवाही को सहन नहीं करेंगे, वे इसके विरुद्ध उठ खड़े होंगे, और यही वो बात है जो परमेश्वर के लोगों के बीच हिलाहट उत्पन्न करेगी। मैंने देखा कि सच्चे साक्षी की गवाही को आधा भी ध्यान नहीं दिया गया है। वो गंभीर गवाही जिस पर कलीसिया का भाग्य टिका है को हल्के में लिया गया है यदि उसे पूरी तरह उपेक्षित नहीं किया गया है। ये गवाही गहरे पश्चाताप को उत्पन्न करनी चाहिए। जो भी इसे वास्तव में स्वीकार करते हैं वे इसका पालन करेंगे और शुद्ध किए जाएंगे। अर्ली राइटिंग्स 271।
आंतरिक कंपन उन लोगों के कारण होता है जो लाओदीकियाई संदेश की प्रस्तुति का विरोध करते हैं। सिस्टर व्हाइट 1888 में जोन्स और वैगनर के संदेश को लाओदीकियाई संदेश के रूप में पहचानती हैं।
A.T. Jones और E.J. Wagner द्वारा हमें दिया गया संदेश लाओदीकिया की कलीसिया के लिए परमेश्वर का संदेश है, और हाय हर उस व्यक्ति पर जो सत्य को मानने का दावा करता है फिर भी दूसरों की ओर परमेश्वर प्रदत्त किरणों का परावर्तन नहीं करता। The 1888 Materials 1053।
लाओदीकिया के संदेश का विरोध एक उथल पुथल पैदा करता है, और बहन व्हाइट 1888 के संदेश का संबंध प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 के स्वर्गदूत के अवतरण से जोड़ती है।
पूर्व धारणाओं को त्यागने और इस सत्य को स्वीकार करने की अनिच्छा मिनियापोलिस में भाइयों वैगनर और जोन्स के माध्यम से आए प्रभु के संदेश के विरुद्ध प्रकट हुए विरोध के बड़े हिस्से की जड़ में थी। उस विरोध को भड़काकर शैतान ने हमारे लोगों से बहुत हद तक पवित्र आत्मा की उस विशेष शक्ति को दूर रखने में सफलता पाई जिसे परमेश्वर उन्हें प्रदान करने के लिए लालायित था। शत्रु ने उन्हें उस दक्षता को प्राप्त करने से रोका जो सत्य को संसार तक पहुंचाने में उनकी हो सकती थी, जैसा कि प्रेरितों ने पेंतेकोस्त के दिन के बाद उसे घोषित किया था। वो प्रकाश जो अपनी महिमा से समस्त पृथ्वी को प्रकाशित करने वाला है उसका विरोध किया गया, और हमारे ही भाइयों की कार्रवाई से वो बहुत अंश तक संसार से दूर रखा गया है। चुने हुए संदेश पुस्तक 1 513। पाइश
पिंतेकुस्त के काल की शुरुआत में थॉमस का संदेह जो पिंतेकुस्त के दिन पहुंचे संदेश के विरुद्ध विद्रोह का प्रतीक था, उस हिलावट का भी प्रतीक था जो तब हुई थी जब सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के नेतृत्व ने उठकर लाओदीकिया की कलीसिया के लिए प्रस्तुत किए गए संदेश का विरोध किया, जैसा कि 1888 में जोन्स और वैगनर ने प्रस्तुत किया था। 1888 में फिर लाविंस एमर्सन इसके इंदालो को 18 का शक्तिशाली दूत पृथ्वी को अपनी महिमा से प्रकाशित करने के लिए उतरा, परंतु मुख्यतः उन नेताओं की अपनी पूर्व धारणाओं को अलग रखने की अनिच्छा के कारण कोरा, दातान और अबीराम का विद्रोह फिर से दोहराया गया। थॉमस पिंतेकुस्त के समय के यहूदी, मूसा के समय का कोरह का विद्रोह, 1888 का विद्रोह, ये सब नवंबर का प्रतीक हैं जब योएल के अनुसार एक नरसिंगा फूंका जाना था। वो नरसिंगा यशाया के अनुसार परमेश्वर की प्रजा के पापों को उजागर करने के लिए फूंका गया था। इस प्रकार वो 1888 और लाओदीकिया के लिए दिए गए संदेश का प्रतीक ठहरता है। यिर्मयाह का पहरेदार जो पुराने मार्गों पर लौटने के लिए नरसिंगा फूंकता है, यशायाह के अपनी वाणी को नरसिंगे के समान ऊंचा करने के साथ मेल खाता है। यिर्मयाह के पहरेदार वही हब्बक्कूक के पहरेदार है जो ये प्रश्न पूछता है कि अपने इतिहास के वाद विवाद में उसका स्थान क्या होगा।
मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और मीनार पर अपना स्थान लूंगा और देखता रहूंगा कि वो मुझसे क्या कहेगा, और जब मुझे ताड़ना दी जाएगी तब मैं क्या उत्तर दूंगा। हब्बक्कूक 2:1।
रिप्रूव्ड शब्द का अर्थ फटकारा गया या उससे बहस की गई होता है। और ये एक प्रश्न की ओर संकेत करता है, क्योंकि अगला पद उसका उत्तर देता है।
और प्रभु ने मुझे उत्तर दिया और कहा, दर्शन लिख और उसे पट्टिकाओं पर स्पष्ट लिख, ताकि जो उसे पढ़े वो दौड़ सके। हबक्कूक 2:2।
मिलराइट इतिहास की पूर्ति में जो बहस या हिलावट शुरू हुई, वो विलियम मिलर के संदेश और भविष्यवाणी की व्याख्या के उनके नियमों बनाम प्रोटेस्टेंटवाद के धर्मशास्त्रियों के बीच थी। मिलराइट इतिहास में ये बहस 11 अगस्त 1840 को मिलराइट संदेश की पुष्टि के साथ शुरू हुई, जब यीशु मसीह से कम कोई व्यक्तित्व नहीं एक छोटी पुस्तक लेकर उतरे, जिसे यूहन्ना को लेना और खाना था। हबक्कूक के पहरेदारों का तर्क, थॉमस के संदेह, 1888 का विद्रोह, कोरह का विद्रोह, पेंटिकॉस्ट पर नशे के आरोप, ये सब उस बहस की गवाही देते हैं जो 9:11 पर शुरू हुई। जिस विवाद पर बहस हो रही है वो अंतिम वर्षा के संदेश को लेकर है, जिसकी फुहारें 9:11 पर शुरू हुई। हबक्कूक में दिया गया या वो उत्तर जिसने मिलराइट्स को 1843 का चार्ट तैयार करने के लिए प्रेरित किया, उपासकों के दो वर्गों के विकास से जुड़ा है, जिसका प्रतिनिधित्व कोरह और उसके साथी बना मूसा, तोमा और अन्य शिष्य, पेंटेकोस्ट पर नशे में होने का यहूदी तर्क, 1838 में एडवेंटिज्म का नेतृत्व, 1844 में प्रोटेस्टेंट बनाम मिलराइट्स और 22 अक्टूबर 1844 की मूर्ख और बुद्धिमान कुंवारियां करते हैं। नोआ वेमर को मसीह ने अपने शिष्यों पर फूंक मारी और पवित्र आत्मा दी, रविवार के कानून पर होने वाले पूर्ण उंडेले जाने से पहले की कुछ बूंदों के समान। फिर उसने उन शिष्यों को यिर्मयाह के पुराने मार्गों पर वापस ले जाकर उनकी समझ को उस भविष्य सूचक संदेश के लिए खोला, जो रेखा पर रेखा के साथ मूसा से आरंभ होता है, जहां उन्हें चेतावनी की तुरही फूंकने के लिए अभिषिक्त किया गया। 9 वेमर को मसीह की वो सांस हेजिकेल और यूहन्ना द्वारा उल्लिखित चार हवाओं से आई, और वो लाओदीकिया का संदेश था, जो सीधी गवाही है, जो विरोध किए जाने पर हिलावट उत्पन्न करती है। 1888 को रहे दातान और अबीराम के विद्रोह का प्रतिरूप है, क्योंकि न केवल संदेश ही अस्वीकार किया जा रहा था, बल्कि वे चुने हुए पहरेदार भी, जो तुरही को स्पष्ट ध्वनि दे रहे थे, अस्वीकार किए जा रहे थे। सिस्टर व्हाइट ने लिखा कि जो कंपन मैंने देखा था वह लाओदीकियों के लिए सच्चे गवाह के परामर्श से उत्पन्न हुई सीधी गवाही के कारण होगा। 1888 का संदेश वही सीधी गवाही था, और 1888 तथा 9 उग्ज दोनों ही प्रकाशित वाक्य का 18 के स्वर्गदूत के अवतरण को चिह्नित करते हैं।
सोए हुए लोगों को जागृत करने के लिए हमारे चर्चों और संस्थानों को एक सीधी गवाही दी जानी चाहिए। जब प्रभु के वचन पर विश्वास किया जाता है और उसका पालन किया जाता है, तब निरंतर प्रगति होगी। आइए अब अपनी बड़ी आवश्यकता देखें। जब तक वो सूखी हड्डियों में प्राण नहीं फूंकता, प्रभु हमें उपयोग में नहीं ले सकता। मैंने ये शब्द सुने, हृदय पर परमेश्वर की आत्मा की गहरी चालना के बिना, उसके जीवनदायी प्रभाव के बिना, सत्य एक मृत अक्षर बन जाता है। रिव्यू एंड हेराल्ड, 18 नवंबर 1902।
9:7 पर लाओदीकिया का संदेश अपनी पूर्ण परिपूर्ति तक पहुंचा, जब परमेश्वर की पूर्व वाचा की प्रजा के लिए अंतिम पुकार सुनाई जाने लगी। उसी समय सिस्टर व्हाइट उल्लेख करती हैं, सोए हुए जाग उठें। इसके लिए हमारी कलीसियाओं और संस्थानों को एक सीधी गवाही दी जानी चाहिए। लाओदीकिया का संदेश तब आरंभ हुआ जब 9:7 पर प्रकाशित वाक्य 18 का स्वर्गदूत उतरा, जिसका अर्थ है कि 9:7 पर लाओदीकिया अवस्था के सेवेंथ डे एडवेंटिस्टों के लिए संदेश तब भी और अब भी जागो है। योएल ने अध्याय 1:5 में पियक्कड़ों को जागने की आज्ञा दी। 9:7 पर एडवेंटवाद के अंतिम परीक्षा काल के आगमन को चिह्नित करता है, और ये योएल की जागो की आज्ञा का प्रतिनिधित्व करता है। पिंतकुस्त के काल की शुरुआत 9:7 पर परमेश्वर की प्रजा के जागरण से होती है, और ये रविवार के कानून से ठीक पहले 10 कुवारियों के दृष्टांत की पूर्ति के साथ समाप्त होती है। 9:11 की जागृति धर्म त्याग में पड़े वाचा के लोगों की अंतिम पीढ़ी के लिए एक बुलाहट है। रविवार के कानून से ठीक पहले की जागृति पूर्व वाचा के लोगों के लिए द्वार बंद कर देती है। आरंभ और अंत एक समान है, और जुलाई 2023 में प्रकाशित वाक्य 11 के दो गवाह 18 जुलाई 2020 की भविष्यवाणी के संबंध में हुए विद्रोह के प्रति जागृत किए गए। मध्य की जागृति का प्रतीक विद्रोह है, जो नई नलैंग के हुको हिब्रू वर्णमाला के पहले अक्षर के रूप में, 18 जुलाई 2020 को 13वें अक्षर के रूप में और रविवार की कानून को 22वें तथा अंतिम अक्षर के रूप में चिन्हित करता है। 22वां अक्षर दिव्यता और मानवता के सम्मिलन का प्रतिनिधित्व करता है, जो उन तीन जागृतियों में से अंतिम में पूर्ण होता है। प्रभु 9 बीएलवर के समय सूखी हड्डियों में प्राण फूंकता है, ठीक वैसे ही जैसे पेंटिकॉस्त काल के प्रारंभ में उसने शिष्यों पर फूंक मारकर उन्हें पवित्र आत्मा दिया था। उसके स्वर्गारोहण के बाद के शिष्य उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया और जिनकी भविष्यवाणी के वचन की समझ बाद में पंक्ति पर पंक्ति की पद्धति से खोल दी गई। पवित्र आत्मा का ग्रहण भोजन करते समय हुआ, क्योंकि आध्यात्मिक भोजन का अर्थ ये है कि आप यीशु, जो वचन है, का मांस खाए और उनका लहू पिए। कोढ़, दातान और अबीराम के साथ मिल जाने वाले विद्रोही और 1888 में एडवेंटिज्म का नेतृत्व भी उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो परमेश्वर की प्रजा के पापों को उजागर करने और लैव व्यवस्था 26 के 7 बार द्वारा दर्शाए गए मूलभूत सत्यों अर्थात पुराने पथों की ओर लौटने का आह्वान करने वाले तुरही संदेश का विरोध करके हिलावट उत्पन्न करता है। तुरही पुनर्जागरण और सुधार दोनों का आह्वान कर रही है। मिलर के भविष्य सूचक रत्नों में पहला, और जिसे एडवेंटिज्म ने सबसे पहले अस्वीकार भी किया, मिलराइट आंदोलन की शुरुआत और समाप्ति का प्रतिनिधित्व करता है। मिलराइटों द्वारा प्रचारित पहले स्वर्गदूत के संदेश की शुरुआत और समाप्ति मूसा के 7 बार द्वारा चिह्नित है। आरंभ में उसे स्वीकार किया गया, अंत में उसे अस्वीकार किया गया। उस अस्वीकार के कारण यहेजकेल एडवेंटिज्म को मरी हुई सूखी हड्डियों की घाटी के रूप में प्रस्तुत करता है। यशाया 22 के अनुसार 1863 से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका में संडे लॉ तक का काल दृष्टि की घाटी है, परंतु यहेजकेल के अनुसार वो मरी हुई सूखी हड्डियों की घाटी है। ये दोनों भविष्य सूचक घाटियां योएल की यहोशापात की घाटी से मेल खाती है, जिसे योएल निर्णय की घाटी भी कहता है। इन अवधारणाओं को समझ लेने पर ये प्रश्न उठ सकता है, 9/11 के समय योएल की पुस्तक कैसे वो संदेश बन गई जिसे पतरस ने पिंतेकोस्त के दिन पहचाना था। हम आगामी लेखों में इन अवधारणाओं को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे।
5 नवंबर 1892 को एडिलेड, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया से प्रिय भतीजे और भतीजी फ्रैंक और हैटी बेल्डिन को लिखा गया, जब आप पवित्र आत्मा से प्रबुद्ध होंगे तब आप मिनियापोलिस की सारी दुष्टता को वैसा ही देखेंगे जैसी वो है, जैसा परमेश्वर उसे देखता है। यदि इस संसार में मैं आपको फिर कभी न देखूं, तो निश्चिंत रहें कि आपने बिना किसी कारण जो शोक, क्लेश और आत्मा पर बोझ मुझ पर डाला है, उसे मैं आपको क्षमा करता हूँ। परंतु आपकी आत्मा के हित के लिए और उसके खातिर जो आपके लिए मरा, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी भूलें देखें और उन्हें स्वीकार करें। आप उन लोगों के साथ मिल गए जिन्होंने परमेश्वर की आत्मा का विरोध किया। आपके पास वो सब प्रमाण थे जिनकी आपको आवश्यकता थी कि प्रभु भाई जोन्स और भाई वैगनर के माध्यम से कार्य कर रहे थे, परंतु आपने प्रकाश को ग्रहण नहीं किया और उन भावनाओं को बढ़ावा देने और सत्य के विरुद्ध कहे गए वचनों के बाद आप ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए कि आपने गलत किया था, कि इन व्यक्तियों के पास परमेश्वर का संदेश था और आपने संदेश तथा संदेशवाहों को दोनों को हल्के में लिया था। हमारे लोगों के बीच मैंने इससे पहले कभी भी उतनी दृढ़ आत्मसंतुष्टि और प्रकाश को स्वीकारने तथा मानने की उतनी अनिच्छा नहीं देखी जितनी मिनियापोलिस में प्रकट हुई। मुझे दिखाया गया है कि उस सभा में प्रकट हुए जिस भाव को जिन्होंने संजोए रखा, उस दल में से एक भी तब तक फिर से ऐसा स्पष्ट प्रकाश नहीं पाएगा जिससे वे स्वर्ग से उन्हें भेजे गए सत्य की बहुमूल्यता को पहचान सकें, जब तक कि वे अपना घमंड न झुकाएं और ये स्वीकार न करें कि वे परमेश्वर के आत्मा से संचालित नहीं थे, बल्कि उनके मन और हृदय पूर्वाग्रह से भरे हुए थे। प्रभु उनके निकट आना चाहता था, उन्हें आशीष देना चाहता था और उनकी पष्टगामिता से उन्हें चंगा करना चाहता था, परंतु उन्होंने कान न दिया। वे उसी आत्मा से संचालित थे जिसने कोरा, दातान और अबीराम को प्रेरित किया था। इसराइल के वे पुरुष ये ठान चुके थे कि वे हर उस प्रमाण का विरोध करेंगे जो उन्हें गलत सिद्ध करे, और वे अपने विद्रोह के मार्ग पर लगातार बढ़ते गए, यहाँ तक कि बहुत से लोग बहका लिए गए और उनके साथ मिल गए। ये कौन थे? न तो कमजोर, न अज्ञानी, न ही अप्रबुद्ध। उस विद्रोह में मंडली के प्रसिद्ध 250 प्रधान यशस्वी पुरुष थे। उनकी गवाही क्या थी? मंडली के सब लोग पवित्र हैं, हर एक, और प्रभु उनके बीच में है। फिर तुम प्रभु की मंडली से अपने आप को ऊपर क्यों उठाते हो? नंबर 0:16:3। जब कोरह और उसके साथी परमेश्वर के न्याय के अधीन नष्ट हुए, तब जिन लोगों को उन्होंने धोखा दिया था, उन्होंने इस चमत्कार में प्रभु का हाथ नहीं देखा। अगली सुबह पूरी मंडली ने मूसा और हारून पर ये आरोप लगाया, तुमने प्रभु के लोगों को मार डाला, वैस 41, और मंडली पर महामारी आ पड़ी और 14,000 से अधिक नष्ट हो गए। जब मैंने मिनियापोलिस छोड़ने का निश्चय किया तो प्रभु का दूत मेरे पास खड़ा हुआ और कहा, ऐसा कदापि नहीं, परमेश्वर ने तेरे लिए इस स्थान पर करने को एक काम रखा है। लोग कोरह, दातान और अबीराम के विद्रोह को दोहरा रहे हैं। मैंने तुझे तेरे उचित पद पर रखा है, जिसे जो लोग ज्योति में नहीं है मानेंगे नहीं, वे तेरी गवाही पर ध्यान नहीं देंगे, पर मैं तेरे साथ रहूंगा, मेरा अनुग्रह और मेरी शक्ति तुझे संभाले रखेगी। वे तेरा नहीं परंतु दूतों और उस संदेश का तिरस्कार कर रहे हैं जिसे मैं अपनी प्रजा के पास भेजता हूँ। उन्होंने प्रभु के वचन का तिरस्कार किया है। शैतान ने उनकी आँखों को अंधा कर दिया है और उनकी निर्णय बुद्धि को विकृत कर दिया है। और जब तक हर आत्मा अपने इस पाप से, ये अपवित्र स्वच्छंदता जो परमेश्वर की आत्मा का अपमान कर रही है, मन न फिराएगा, वे अंधकार में चलेंगे। यदि वे मन न फिराएं और बदलकर लौट न आएं कि मैं उन्हें चंगा करूं, तो मैं दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। उन्होंने अपनी आत्मिक दृष्टि को धुंधला कर दिया है। वे नहीं चाहते कि परमेश्वर अपना आत्मा और अपनी शक्ति प्रकट करे, क्योंकि मेरे वचन के विषय में उनमें उपहास और घृणा की आत्मा है। हल्केपन, तुच्छ बातों में पड़ना, ठट्टा मजाक और हंसी ठिठोली प्रतिदिन की जाती हैं। उन्होंने मुझे ढूंढने के लिए अपना हृदय नहीं लगाया है। वे अपनी ही सुलगाई हुई चिंगारियों के प्रकाश में चलते हैं, और यदि वे मन न फिराएं तो शोक में पड़े रहेंगे। प्रभु यूं कहता है, अपने कर्तव्य के पद पर डटे रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और न तुझे छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। परमेश्वर की इन बातों की अवहेलना करने का मैंने साहस नहीं किया।
बैटल क्रीक में प्रकाश स्पष्ट उज्ज्वल किरणों में चमकता रहा है, परंतु मिनियापोलिस कि उस बैठक में भाग लेने वालों में से कौन ऐसा है जो प्रकाश के पास आया हो और वे सत्य के समृद्ध खजाने ग्रहण किए हों जिन्हें प्रभु ने स्वर्ग से उनके लिए भेजे थे? किसने नेता यीशु मसीह के साथ कदम से कदम मिलाया है? किसने अपने भ्रमित उत्साह, अपनी अंधता, अपनी ईर्ष्याओं और बुरी शंकाओं, सत्य के प्रति अपने विरोध की पूर्ण स्वीकारोक्ति की है? एक भी नहीं। और प्रकाश को स्वीकार करने में उनकी लंबी उपेक्षा के कारण वो उन्हें बहुत पीछे छोड़ गया है। वे अनुग्रह में और हमारे प्रभु मसीह यीशु के ज्ञान में बढ़ते नहीं रहे। वे उस आवश्यक अनुग्रह को ग्रहण करने में असफल रहे हैं जिसे वे पा सकते थे और जो उन्हें धार्मिक अनुभव में दृढ़ व्यक्ति बना देता।
मिनियापोलिस में जो रुख अपनाया गया वो मानो एक अजेय बाधा बन गया, जिसने उन्हें बड़े पैमाने पर संदेहियों, प्रश्न करने वालों और सत्य तथा परमेश्वर की शक्ति को अस्वीकार करने वालों के साथ ही सीमित कर दिया। जब एक और संकट आएगा तो वे लोग जिन्होंने इतने लंबे समय तक प्रमाण पर प्रमाण का विरोध किया है, फिर से उन्हीं बिंदुओं पर परखे जाएंगे जहां वे इतने स्पष्ट रूप से असफल हुए थे, और उनके लिए ये कठिन होगा कि वे जो परमेश्वर की ओर से है उसे स्वीकार करें और जो अंधकार की शक्तियों की ओर से है उसे अस्वीकार करें। इसलिए उनके लिए सुरक्षित एकमात्र मार्ग यही है कि वे नम्रता में चलें, अपने पैरों के लिए सीधे पथ बनाते हुए, कहीं ऐसा न हो कि लंगड़ा मार्ग से हट जाए। हम किनके साथ संगति रखते हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है। क्या हम उनके साथ हैं जो परमेश्वर के साथ चलते हैं
और उस पर विश्वास और भरोसा रखते हैं, या उनके साथ जो अपनी मानी हुई बुद्धि का अनुसरण करते हैं अपनी ही सुलगाई हुई चिंगारियों में चलते हुए।
सत्य के विरुद्ध काम करने वालों के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए जो समय, ध्यान और परिश्रम लगाना पड़ा है वो एक भयंकर हानि रहा है, क्योंकि हम आध्यात्मिक ज्ञान में वर्षों आगे हो सकते थे, और यदि वे लोग जिन्हें ज्योति में चलना चाहिए था प्रभु को जानने के लिए आगे बढ़ते, ताकि वे जान लेते कि उसका आगमन प्रभात के समान निश्चित है, तो बहुत सी आत्माएं कलीसिया में जोड़ दी गई होती। परंतु जब कलीसिया के भीतर ही इतना अधिक परिश्रम उन कार्यकर्ताओं के प्रभाव का प्रतिकार करने में लगाना पड़ता है जो परमेश्वर अपने लोगों को जो सट्टे भेजता है उसके विरुद्ध ग्रेनाइट की दीवार बनकर खड़े रहे हैं, तब संसार तुलनात्मक अंधकार में छोड़ दिया जाता है।
परमेश्वर का अभिप्राय था कि पहरेदार उठ खड़े हों और एकजुट स्वर में एक दृढ़ स्पष्ट संदेश दें, तुरही में निश्चित ध्वनियां फूंकते हुए, ताकि लोग सब के सब अपने अपने कर्तव्य स्थानों पर तत्परता से पहुंचे और महान कार्य में अपना भाग निभाएं। तब उस दूसरे स्वर्गदूत का प्रबल और स्वच्छ प्रकाश, जो महान सामर्थ्य के साथ स्वर्ग से उतरता है, अपनी महिमा से संपूर्ण पृथ्वी को भर दिया होता। हम वर्षों पीछे हैं, और जो लोग अंधेपन में खड़े रहे और उसी संदेश की प्रगति को रोकते रहे जिसे परमेश्वर चाहता था कि मिनियापोलिस की सभा से जलते हुए दीपक के समान निकलकर आगे बढ़े, उन्हें अपने हृदयों को परमेश्वर के सामने दीन करना चाहिए और देखना समझना चाहिए कि उनके मन के अंधेपन और हृदय की कठोरता के कारण कार्य किस प्रकार बाधित हुआ है।
छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी करते हुए घंटों बिताए गए, स्वर्णिम अवसर व्यर्थ गंवा दिए गए, जबकि स्वर्गीय दूत विलंब से अधीर होकर शोकित रहे। पवित्र आत्मा, उसके मूल्य की और प्रत्येक आत्मा के उसे प्राप्त करने की आवश्यकता की कितनी कम कद्र हुई है। जो लोग इस स्वर्गीय वरदान को ग्रहण करते हैं वे धर्म का कवच पहनकर परमेश्वर के लिए युद्ध करने निकलेंगे, वे प्रभु के मार्गदर्शन का सम्मान करेंगे और उसकी दया के लिए उसके प्रति कृतज्ञता से भर जाएंगे। परंतु बहुत से स्थानों पर और बहुत से अवसरों पर, जैसा मसीहा के दिनों में परमेश्वर के लोग कहलाने वालों के विषय में सत्य कहा जा सकता था, वैसा ही कहा जा सकता है कि उनके अविश्वास के कारण बहुत से शक्तिशाली कार्य नहीं किए जा सके। अंधकार की बेड़ियों में बंधे रहे अनेक लोगों का सम्मान किया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने उनका उपयोग किया है, और उनके अविश्वास ने सत्य के उस संदेश के विरुद्ध संदेह और पक्षपात को भड़का दिया है जिसे स्वर के दूत मानवीय माध्यमों द्वारा पहुँचाना चाहते थे। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना मसीह की धार्मिकता। दी आठी ने 88 मटेरियल्स 667-670।